ये आकाशवाणी है, अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों और वंचितों के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र और सेवा की भावना ही आज सरकार की नीति और निष्ठा है। श्री मोदी आज मध्य प्रदेश के अशोकनगर के ईसागढ़ में श्री आनंदपुर धाम में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने परमहंस द्वैत संप्रदाय के मंदिर के दर्शन किए, प्रमुख गुरु से भेंट की और सत्संग कार्यक्रम में भाग लिया। श्री मोदी ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि दान ही सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि गरीब और वंचित वर्ग का जीवन सुगम बनाने के लिए हमारी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन जैसी विभिन्न योजनाएं चला रही है।
आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब और बुजुर्ग आयुष्मान योजना के कारण इलाज की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब पीएम आवास योजना के कारण अपने पक्के घर की चिंता से मुक्त हो रहा है। गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, सेवा की ये भावना आज ये सरकार की नीति भी है और निष्ठा भी है।
प्रधानमंत्री ने वाराणसी के मेहदीगंज में 3,884 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 44 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं में सड़क अवसंरचना, बिजली, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में विकास शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चेन्नई में कहा कि भाजपा 2026 के विधानसभा चुनाव अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम के नेतृत्व में लड़ेगी।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव AIDMK, भारतीय जनता पार्टी और सभी साथी दल मिलकर NDA के नाते लड़ेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर AIDMK के नेता एड़ाप्पाडी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।
श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने तमिल युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा तमिल भाषा में देने की अनुमति दी थी। उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कझगम सरकार पर छात्रों को तमिल भाषा में चिकित्सा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की अनुमति नहीं देने और तीन भाषा शिक्षा में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। हुर्रियत से जुड़े एक अन्य संगठन जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट ने अलगाववाद को खारिज करते हुए भारत की एकता के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता जताई है। हुर्रियत से जुड़े अब तक 12 संगठन संविधान पर भरोसा जताते हुए अलगाववाद से अलग हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने की जीत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की सफल राजकीय यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करने से पहले स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ एक संवाद सत्र में शामिल हुई। राष्ट्रपति की स्लोवाकिया यात्रा कई कारणों से ऐतिहासिक रही। लगभग 30 वर्षों के अंतराल के बाद ये यात्रा हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और इटली विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली साझेदारी को व्यापक रणनीतिक संबंध में बदलने के लिए काम कर रहे हैं। श्री गोयल ने नई दिल्ली में आज इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक रणनीतिक संबंध वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देंगे। घरेलू शेयर बाजार में आज जोरदार लिवाली की गई और प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज कारोबार के अंत में 1,310 अंक यानी 1.77% बढ़कर 75,157 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 429 अंक यानी 1.92% उछाल के साथ 22,829 दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।